قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يوم هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. صدق العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے مومنین کو میں امام اعظم کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو. حالات اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ظہور قریب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے امام کا ظہور کرائے اور ہم کو ان کا صحابوں میں شمار کرے. تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے تفسیر قرآن کا، یہ 235 آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا میں نے. یہ جو آیت ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ جب بیواؤں کی جو عدت کی جو مدت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر شادی کی بات ان سے آگے چلانا ہے تو اس بارے میں آیت ہے. ولا جناح علیکم ان طلقتم، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تم کو اس بات کا کوئی گناہ نہیں. فیما عرضتم بہ، جبکہ تم عرضتم، کس کو کہا جاتا ہے کہ اشارتاً بات کی جائے. بیوہ اگر ہے اور اس کی عدت چل رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ولا جناح علیکم، تم کو اس بات کا گناہ نہیں. فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم اگر اشارتاً ان سے، خطبہ کس سے بنا ہے؟ خطبہ اس کو کہتے ہیں میرج پروپوزل کو، میرج پروپوزل کو خطبہ کہا جاتا ہے. عرضتم مطلب اشارتاً کہا جائے میرج پروپوزل. فیما عرضتم بھی من خطبہ، فیما عرضتم بھی من خطبۃ النساء، کہ اگر تم حالت عدت میں ان سے، بیواؤں سے اشارتاً شادی کی بات کرو تو اس پہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے. او اکنن تم فی انفسکم، یا تم اس کو اپنے دل میں مخفی رکھو، یا اگر تمہارے دل میں خواہش آ رہی ہے ان سے نکاح کی، کیونکہ اسلام فطرت کا مذہب ہے، فطرت انسان کی ہوتی کہ ہاں بیوہ ہے عدت میں، ہو سکتا ہے کہ خواہش ہو نکاح کی، اگر آپ اس پہ مخفی رکھیں گے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. یا اگر آپ اس سے شادی کا پروپوزل انڈائریکٹلی رکھیں گے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تفسیر میزان میں ذکر ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ منقول ہے کہ کس طرح سے اشارتاً بات کی جا سکتی ہے شادی کی، تو کہا امام نے مثال دی، میں وہ پسند نہیں کرتا مگر وہ کہ جس کو تم پسند کرو، یا یہ کہہ دیں کہ تمہاری عدت کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں کہیں جاؤں گا نہیں، یا یہ کہہ دیں کہ تم کو اپنے آپ کو اکیلا نہیں رکھنا ہے. تو اس طرح کے اشاروں سے آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں. या उसको अव अकनन तुम फी अनफसिकुम, या अपने दिल में उसको छुपा के रहो। अलीम अल्लाह अन्नकुम कुंतुम, नहीं अलीम अल्लाह अन्नकुम सदत कुरूना हुन्ना, खुदा जानता है कि तुम उसका उनका ख्याल करोगे, खुदा को जानता है कि तुम इस बात का ख्याल करोगे। वला किल्ला तू वायदो हुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम उनसे पोशीदा तौर पर कोई कौल करार मत करना। इल्ला अन तकुलु कौलम मारूफा, मगर यह कि उनसे अच्छी बात कह दो। तो अल्लाह सुब्हान तआला आगे फरमाता है कि हालत इद्दत में तुम उनसे पोशीदा तौर पर कोई कौल करार मत करना, इशारतन बात कर दो सही है, दिल में ख्याल ले आओ, कोई गुनाह नहीं है। वला किल्ला तो वायद होना सरन इल्ला अन तकुलु कौलम मारूफा, उनसे कोई छुपा के कोई कौलो करार मत करना। वला ताजिम उकदतन निकाही हत्ता यबलगुल किताब अजला, आगे अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि उनसे निकाह का पुख्ता इरादा निकाह न करना जब तक के मुकर्रर मुद्दत गुजर न जाए। वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहजरू, वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, जान लो कि खुदा जो कुछ तुम्हारा दिल में है उसको जानता है, तो तुम खुदा से डरते रहो और जान लो कि खुदा बख्शने वाला भी और हिल्म वाला भी है। दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूरी तरीक़े बताए हैं कि अगर कोई बेवा हो तो इद्दत के वक्त उससे आप इनडायरेक्टली आप निकाह की बात कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोई कौल करार नहीं कर सकते आप उससे, ख्याल उसका ला सकते हैं और आप उससे निकाह का पुख्ता इरादा भी नहीं कर सकते हैं। फिक के हिसाब से कोई अगर इद्दत के दौरान निकाह कर ले तो निकाह बातिल होता है, और अगर जानबूझ के निकाह करा है तो औरत हमेशा के लिए हराम हो जाती है, क्योंकि आपने जानबूझ के खुदा के हुक्म की ना फरमाने की है। आगे के जो आयत है वो तलाक के बारे में, ला जुनाहा अलैकुम इन तलक्तुम निसा मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफरीज़ुहुन्ना फरीज़ा वमद्दहुन्ना अलल मौसी क़दरहु वो अलल मुख्तर ही क़दरहु मताउम बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह सुब्हान व तआला आगे जो बात कर रहा है वो तलाक के सिलसिले की बात कर रहा है, वो तलाक का सिलसिला है जिसमें निकाह तो हो चुका है लेकिन मर्द ने उस औरत को छुआ नहीं है और न मेहर की मियाद ठहरी है। ला जुनाह अलैकुम, तुम पर इस बात का गुनाह नहीं है, इन तलक्तुम निसा जब तुम औरतों को तलाक दो, मा लम तमस्सु हुना और तुमने उनको हाथ ना लगाया हो, अब तफरीज़ लहुन्ना फरीज़ा यानी तुमने उनका मेहर ना ठहराया हो, अव मत्तहुन्ना अलल मूसी क़दरहु अलल मुख्तरी क़दरहु, तो तुम उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ दे दो, दौलतमंद अपने हिसाब से दे और मुफलिस अपने हिसाब से दे, मताउन बिल मारूफ ही, मताउन बिल मारूफ ही मतलब दस्तूर के हिसाब से उनको खर्च दे दो, हक्कन अलल मुहसिनीन ये नेकी कारों पर एक तरह का हक है। तो इसकी तफसीर इस तरह बयान की जाती है कि जब निकाह तो हो गया अगर हाथ न लगाया हो औरत को और मेहर न ठहरा हो, तो अगर तलाक हो रही है तो उस वक्त ही गुनाह नहीं कि आप उसको छोड़ दो, लेकिन उसमें यह है कि आप चूंकि मेहर ठहरा नहीं है और आपने हाथ लगाया तो उसमें आप एक दस्तूर के मुताबिक कुछ दे दो, दौलतमंद अपने हिसाब से दे, गरीब अपने हिसाब से दे, ताकि क्या है कि औरत पे जो सदमा लगा है कि निकाह हुआ था टूट गया, उस सदमे को से हटने को जो कि सख्त जो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, तो आप एक उसको गिफ्ट दें, आप दौलतमंद अपने हिसाब से गिफ्ट दे, गरीब अपने हिसाब से गिफ्ट दे। हक्कन अलल मोहसिनीन, ये मोहसिनीन पे हक है। तो इलादत फरमाते हैं कि ये वाजिब काम है। जब अल्लाह सुब्हान तआला कहते हक्कन अलल मोहसिनीन, मतलब ये वाजिब हो गया। जी हाँ, हक्कन अलल मोहसिनीन। दुरूद पढ़ते हैं। अब आगे की बात अल्लाह सुब्हान तआला ने बयान करी आगे की आयत में, वह इन तलक्तुमुहुन्ना मिन कबल अतमस्सुहुन्ना वक़द फ़रिस्तलहुन्ना फ़रीज़ा फ़निस्फ़ुहु मा फ़रस्तुम इल्ला अन याफ़ु अव याफ़ु अल्लज़ी बियदिही उक़दतन निसा व अन तआफ़ु अक़रबु लित्तक़्वा वला तमसौ फ़ज़ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तामलूना बसीर। जी हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहु ताला आगे की आयत में फरमाता है कि वह इन तलक्तुहुन्ना व मिन कबल अन तमस्सुहुन्ना वक़द फ़रिस्तलहुन्ना फ़रीज़ा फ़निस्फ़ुहु मा फ़रस्तुम इल्ला अन याफ़ु अव याफ़ु अल्लज़ी बियदिही उक़दतन निकाह व अन तआफ़ु अक़रबु लित्तक़्वा वला तंसौल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना बसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे की बात कर रहा है, व इन तलक़्तुमुहुन्ना, जब तुमको तलाक दो, मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको हाथ लगाया हो, वक़्त फ़रस्तलहुन्ना फ़रीज़ा, और तुमने उनका मेहर ठहरा दिया हो, तो इसके अंदर मेहर ठहर चुका है, लेकिन औरत को हाथ ना लगाया गया था, तो उस सिलसिले में फ़निस्फ़ुहु मा फ़रस्तुम, तो जो कुछ तुमने ठहरा था उसका आधा दे दो। फ़निस्फ़ुहु फ़निस्फ़ु मा फ़रस्तुम, मतलब आधा दे दो जो तुमने ठहराया था। इल्ला अन याफ़ुना, मगर यह कि वो आपको बख्श दे। इल्ला अन याफ़ुना, मगर यह कि वो आपको बख्श दे। अव याफ़ुल्लज़ी बियदिही उक़दतन निकाह, या वो जिसके हाथ में निकाह का उक़्द है, यानी कि औरत का वली। तो सिलसिला ये है कि या तो अगर मेहर ठहर चुका है और हाथ न लगाया और तलाक हो गई है, तो आपको आधा मेहर देना है, आपको आधा मेहर देना है। लेकिन अगर औरत बख्श दे, या वो जिसके हाथ में अक़्द निकाह है वो बख्श दे, तो अगर औरत का हक आधा मेहर का है अगर औरत बख्श दे तो ठीक है, या जिसके हाथ में अक़्द निकाह है वो कौन है, अक़्द निकाह किसके हाथ में होता है, औरत का वली। इसमें तफासीर में दो सिलसिला, या तो औरत का वली उसके घर वाले होंगे, या उसका खाविंद होगा, या उसके घर वाले जो आधा मेहर वो बख्श दें, या जो उसका खाविंद है वो आधा मेहर चूंकि उसको देना था वो पूरा दे दे, तो वो भी ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि दोनों सिलसिले सही हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता वह अन ताफू अकरबुल तक़्वा, अगर तुम बख्श दो तो ये परहेजगारी के करीब है। वला तंसुल फ़ज़्ल बैनकुम, और तुम आपस में भलाई को फरामोश न करना। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक खुदा तुम्हारे हर काम को देख रहा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला चाहता सिलसिला ऐसा चले कि एक अच्छे माहौल में सिलसिला चले, कि अगर एक बार मेहर ठहर चुका था आधा मेहर दें, और चाहे उसको बख्श दे, आधा जो बचा वो बख्श दे, या उसका वली बख्श दे। वली में दोनों शुमार होते हैं, या तो उसके घर वाले कहें कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा आधा मेहर, या फिर खाविन कहे कि मैं तुम्हें पूरा मेहर दे देता हूँ, दोनों आते सही है। फिर अल्लाह के सुब्हान अल्लाह फरमाता है अंताफ़ अक़बुल तक़्वा, अगर तुम बख्श दो तो वो परहेजगारी के करीब है। वला तंसुल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में भलाई करने को फरामोश न करना। इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, खुदा तुम्हारे हर काम को देख रहा है। अल्लाह ताला चाहता है कि आप लोगों पर फजल करें, करम करें, एक दूसरे से अच्छे रहें। आप जब डिवोर्स हो रही तो आप हार्ड फीलिंग लेकर नहीं आए, एक एक तकलीफ में ना आए, बल्कि एक दूसरे पर एहसान करें। मतलब अल्लाह ताला तलाक को तकलीफ देनी बनाना चाहता है, तो तलाक को एक आसानी का सिलसिला बनाना चाहता है, ताकि जब एक दूसरे जुदा हो तो अच्छे ख्याल लेके जहाँ दुरूद पढ़ दें। हाफिज सलवाती व सलाती वस्ता व कुमुल कानीती, हाफिज सलवाती व सलातिल वस्ता व कुमुल कानीती, नमाज की पाबंदी करो, खुसूसन बीच की नमाज की, और खुदा के आगे इताअत के साथ खड़े रहा करा करो। अल्लाह सुब्हान तआला इसके अंदर नमाज की बात करी कि मुसलमानों को कहा गया है कि पाबंदी करें नमाज की, हाफिज हो मतलब, हाफिज हो मतलब उसको हिफ्ज करके रखें, हिफ्ज करें मतलब उसको पकड़ के रखें। हाफिज सलवाती वो सलाती वस्ता वो खुसूसन बीच की नमाज, वो कुमुल अल्लाह कानितीन। सलाती वस्ता कौन सा होता है, बीच की नमाज कौन सी है, तफासिर में अलग अलग सिलसिला है। वो ज़्यादातर तफासिर में है कि जोहर और असर का जिक्र है बीच की नमाज में, किसी ने जोहर कहा, किसी ने असर कहा, कहीं कहीं जुमे की नमाज का भी जिक्र है, कहीं पर सुबह की नमाज का जिक्र है, लेकिन जो ज़्यादातर जो रिवायत है वो जोहर और असर से है। खुसूसन जबकि रसूल अकरम ने पहली जो नमाज पढ़ी थी हरत सफ़र में पढ़ी थी, जोहर की नमाज़ पढ़ी थी, चूँकि सफ़र में थे तो दो रकत पढ़ी थी उन्होंने। उस कहा था कि जो लोग अपने शहरों में वो जो घरों पर चार रकत पढ़ें, इस तरह से अल्लाह ताला ने नमाज का सिलसिला शुरू करा था। तो इस आयत के नुज़ूल में यह भी है कि जब गर्मी के दिनों में रसूल अकरम जब नमाज़ पढ़ते थे जोहर की असर की, तो गर्मी इतनी होती थी कि चंद असाब आते थे, मुश्किल से एक या दो सफ़े भर आती थी, खुसूसन मुनाफिकी नहीं आते थे तो मोमिनीन ने भी आना बंद कर दिया था। तो हालत ये हुई थी कि मुश्किल से कुछ नमाजी खड़े होते थे, तो रसूल अकरम को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो रसूल अकरम ने कहा कि अगर तुम ना आओगे घरों में सोते रहोगे, क्योंकि उस वक्त लोग चाहते हैं कि दुनिया पसंद करें, घरों में सो जाएं, गर्मी में कौन आएगा। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर तुम ना आए जमात में तो तुम्हारे घरों में आग लगा दूंगा। ये रहमतुल आलमीन की फरमा रहे हैं, नमाज इतनी बड़ी है रहमतुल आलमीन के लिए। क्यों कहा साहब से कि तुम इधर आओ नमाज पढ़ने, घरों में आग लगा दूंगा, क्योंकि अल्लाह रसूल अकरम चाहते थे कि उनको आखरत दिखाई जाए। दुनिया छोटी चीज है, आखरत दिखाने के लिए खुदा का दीदार हो नमाज, आखरत दिखाने को रसूल अकरम अगर मकान चला देते तो एहसान था रसूल अकरम का उनके ऊपर कि उनको हिदायत दी। दुरूद पढ़ दें, तो ये नमाज का मुकाम है, ये नमाज का मुकाम है। जब हम जोहर का जोहर असर की बात करते हैं तो करबला का जिक्र सामने आता है। करबला के अंदर जो वक्त जोहर के अंदर इमाम हुसैन का साहब ने इमाम हुसैन को फरमाया था कि मौला नमाज का वक्त हो गया इस जंग के दौरान, और हमको खुद मालूम असर की नमाज इमाम हुसैन ने किस तरीके से पढ़ी है। ये वो नमाजें जो कि इस आयत की तफसीर बनती हैं। दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलम, फइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना फैज़ा अमिनतुम फस्करुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस तरह से चाहो नमाज पढ़ लो, फिर तुम अगर अमन की हालत में हो जाओ तो खुदा को इस तरीके से याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया जो पहले तुम न जानते थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने यह आगे की आयत नमाज के बारे में नाजिल फरमाई है, ये उस सिलसिले की है जब जिहाद हो, जब जंग हो, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने आसानी करी मोमिनों को कहा कि तुम पैदल या सवार जिस तरीके से चाहो खुदा को याद कर लो। यानी इस वक्त क्या है कि आप नीयत कर लें, तकबीर के बाद नीयत कर लें और इशारतन नमाज पढ़ लें। आपको ज़रूरत नहीं कि आप सजदे में जाएं और रुकू में जाएं, क्योंकि आप इस वक्त मुश्किलात में हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने आसानी करी है मोमिनीन के लिए, वो कहा कि जब खौफ अल्लाह चले जाए तो मुझको इस तरह से याद करो, फस्करुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, उसको इस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे। सिर्फ अगर मोमिन नमाज को देख ले कि अल्लाह सुब्हान तआला नमाज किस तरीके से सिखाई है उसको, उसके लिए काफ़ी है अल्लाह भी मान लाना। दुरूद पढ़ दें, وآلِ محمد. تفسیر بیان کرا گیا ہے پانچویں چھٹے امام سے منقول ہے کہ اگر تم جنگل میں ہو اور چوروں کا اور ڈاکوؤں کا اور وحشی جانوروں کا ڈر ہو تو بھی آیت آپ پہ آتی ہے, آپ چاہیں تو سواری پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. وَالَّذِينَ يُتَفَّوْا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب تم میں سے جو مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ یہ ان پر وصیت ہے, وہ وصیت کر جائیں کہ وہ گھروں سے نہ نکالی جائیں اور ایک سال کا ان کا نان نقفہ دیا جائے, اور اگر وہ خود گھروں سے نکل جائیں تو اس پر تم کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے نزدیک پسندیدہ کام کر لیں یعنی نکاح کر لیں, اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے. یہ آیت کا نزول اس سلسلے میں ہوا تھا کہ اسلام کے پہلے جاہلیت کے اندر جب کوئی بیوہ ہوتی تھی تو سال بھر گھر رہتی تھی. تو یہ شروع کی آیتوں میں سے آئے تھے, جب تو اس میں بھی وہ سلسلہ اللہ نے قائم رکھا کہ جب تم مر جاؤ تو یہ وصیت تم پہ لازم ہے کہ تم یہ وصیت کر کے جاؤ کہ ایک سال تک کا خرچ ان کا رکھا جائے اور ایک سال تک گھروں سے نہ نکالی جائے, اور اس کے بعد اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں, کوئی نکاح کر لیں. لیکن یہ آیت بعد میں منسوخ اس طریقے سے ہو گئی جب یہ آیت جو عدت کی آیت نازل ہوئی بعد میں, جس میں کہ 4 مہینوں 10 دن تک کہا کہ تم اپنے آپ کو روکی رکھو, اس کے بعد چاہو تو پسندیدہ کام کر لو. تو یہ آیت, یہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو تفسیر میزان سے, تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور دوسری آیت جو سورہ نساء کی جو 12ویں آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی عورتوں کے لیے 1/4 یا 1/8 حصہ وراثت میں دے کے چلے جاؤ, اگر اس اولاد ہے تو 1/8 حصہ, اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/8 حصہ. تو وراثت کی جب آیت آئی تو جب وراثت ملتی ہے عورت کو مرد کی طرف سے تو پھر یہ ایک سال کا نان نقفے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو خود ہی وراثت مل رہی ہے. درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین, اور طلاق والی عورتوں کو بھی نان نفقہ کا خرچ دستور کے مطابق دے دو. نان نفقہ کا خرچ دستور کے مطابق دے دو, یہ پرہیزگاروں پر ایک طرح کا حق ہے. تو یہ کون سے طلاق والے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہا کہ کچھ خرچ چھوڑ کے جاؤ؟ یہ وہ طلاق والی ہیں, وہی ہیں جن کو کہ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن نہ تو ان کو ہاتھ لگایا تھا نہ مہر ٹھہرا تھا, ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ دستور کے مطابق دے دو. پہلی آیت میں اس نے کہہ دیا تھا کہ دولت مند اپنے حساب سے دے اور غریب اپنے حساب سے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. کذالک یبین لکم آیاتی لعلکم تعقلون, اس طریقے سے خدا اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی آیتیں بیان کری بیواؤں کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے اتنی آیتیں کھول کھول کے بیان کری تاکہ تم سمجھو. یہ اللہ کی آیتیں, اللہ نے نشانیاں بیان کری ہیں, کوئی صرف حکیم اور خبیر اور خالق اور رب اس طرح کی آیتیں بیان کرتا ہے. کسی میں مجال نہیں کہ نکاح اور طلاق اور یہ ساری جو پر حکمت آیتیں اللہ کی حکمت کو بیان کرتی ہیں, اس حکیم اور خبیر کی علیم کی حکمت کو بیان کرتی ہیں تاکہ ہم اس پہ ایمان لائیں. درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے, طلاق اور نکاح کی آیتوں سے معاشرے کو زندہ رکھا ہے, وہ نئے معاشرہ مر جاتا. اب اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت بیان کر رہا ہے پھر زندگی کی, لیکن یہ زندگی دوسری ہے, اس میں فزیکل لائف کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. अलम तरा इल्लज़ीना खर्जु मिन दियारहिम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से निकल पड़े, वह हम उलूफून और वह हजारों में थे। हजरल मोती, मौत के डर से निकल गए। अल्लाह तआला फिर कहता क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से निकल गए और वह हजारों में थे, और हजरल मोती मौत के डर से। फ़क़ालमुल्लाह मोतु सुम्मा आया हूं इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वला किन्ना अक्सर नास ला यशकुरून। एक बार वो पढ़ता हूं, फ़काल अहमल्ला मूतु सुम्मा अहया हूँ इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़ल अलिन्नासी वलाकिन्ना अक्सर लासी ला यशकुरून। दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो खुदा ने उनको कहा कि तुम मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। बेशक खुदा लोगों पर बहुत मेहरबान है, लेकिन ज़्यादातर लोग खुदा का शुक्र नहीं करते। ये आयत की तफसीर क्या है? ये शाम का किस्सा है, ये शाम का किस्सा है कि मुल्क शाम के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने एक बस्ती में प्लेग फैलाया और उसमें लोग मर गए। जब लोग मरने लगे तो वहाँ के बाशिंदे निकल के भागे, हज़ारों में भागे। अलम तरा इल्लज़ीना खर्जू मिन दियारहिम, क्या तुमने उन लोगों ने कहा जो कि अपने घरों से निकल पड़े, वहुम उलूफून वो हज़ारों में थे। हजरल मोती, मौत के डर से निकल गए, वो प्लेग के डर से निकल गए, हजारों में थे। अब जो निकल गए तो जब डेजर्ट में आ गए, नई बस्ती बना ली, तो वो फिर गुनाहों में पड़ गए। फिर वो गुनाहों में इंसान कहते थे हजरत इंसान एकदम रिलैक्स हो गया, गुनाहों में आ जाता। अब वेश के अंदर ये शैयाशी लोग गुनाह करने लगते हैं। फ़क़ालमुल्लाह मूतु, तो खुदा ने कहा कि तुम मर जाओ, तो वो जो लोग ऐश इशरत कर रहे थे खुदा ने उनको फिर मारा। सुम आया हूँ, फिर उनको जिंदा भी करा। तो इसकी तफसीर क्या है? तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उन पर फिर प्लेग भेजी। जब अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता फिर मैंने उनको कहा कि तुम मर जाओ, तो कैसे मारा? कोई एकदम थोड़ी मर गए हो। अल्लाह ने प्लेग भेजी फिर से। हमको अल्लाह को पहचानना चाहिए, अल्लाह काम कैसे करता। अल्लाह सुब्हान तआला वसीले से काम करता। देखने को तो प्लेग थी, लेकिन अल्लाह ने कहा फ़क़ालमुल्लाह मूतु। हम इस बात को तवज्जो करें कि अल्लाह सुब्हान तआला जब कुछ करता है तो वसीले से करता है। कि प्लेग भेज के मारा, चाहता तो ऐसे ही मार देता, लेकिन वसीला भेजता हो। अल्लाह सुब्हान तआला हमको देखना है इस दुनिया में, तो वसीले से देखो। बगैर वसीले के अल्लाह समझ में नहीं आएगा। आपको जॉब मिला कि बड़ा अल्लाह ने दिया भाई, ये थोड़ी उसने दिया है बॉस ने। हमको हर चीज दिखती है, अल्लाह नहीं दिखता। हमारी मुसीबत के हम वसीले देखते रहते हैं, अल्लाह नहीं दिखता। मुश्किल में भी नहीं दिखता है, वो फजल में नहीं दिखता। हालांकि अल्लाह को हर तरफ देखना चाहिए। यह आया देखिए फ़क़ालमुल्लाह मूतु, तो अल्लाह ने प्लेग भेजी, बैक्टीरिया आया था। मतलब अल्लाह ताला कोई वो नहीं होता कि फरिश्ता आगे बोला था कि मूतु। मतलब हमारे मसले यही है कि जब अल्लाह को हम वसीले से नहीं देखते, हर चीज़ में वसीला। अगर किसी को कैंसर हो गया है, वो 3 महीने की लड़की लाइव बताई, तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ने कहा हुक्म आ गया, अल्लाह ने कहा कि तुम मर जाओ। तो अल्लाह को पहचाने हम वसीलों के जरिए। अगर हम वसीलों के जरिए न पहचानेंगे तो अल्लाह पहचान में नहीं आएगा। इसी तरह अहले बैत वसीला है, अगर आप उनके जरिए आप अल्लाह को ना पहचानोगे तो अल्लाह समझ में नहीं आएगा। दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा अहया हूँ, फिर हमने उनको जिंदा भी कर दिया। वो जिंदा कैसे हुए फिर? सुम्मा आया हूँ कैसे जिंदा हुए? वो भी वसीले से जिंदा हुए कि जब उनकी हड्डियाँ गल गईं। और एक पैगंबर थे बनी इसराइल के, उनका नाम था इसकील, हजरत इसकील। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हड्डियाँ पड़ी हुई, तो उनको बड़ा तरस आया। अल्लाह ताला ने उन पर इलाम करा, तो उन्होंने पानी लेकर आया। अल्लाह ने इलाम करा, इनकी बोसीदा हड्डी में पानी छिड़को और दुआ करो मैं जिंदा कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने जब उनको जिंदा भी करा तो वसीले जिंदा करा, नबी के वसीले से जिंदा करा। और कहा कि पानी छिड़को, ये नहीं कहा कि जिंदा हो जा। हर तरफ अल्लाह वसीला बताता है, हर तरफ अल्लाह। हाँ, बगैर वसीले के अगर आप किसी हौज में पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला हौज को वसीला बनाएगा। या स्कूल जा रहे हैं आप, अल्लाह ने स्कूल वसीला बनाया, आप जिम जा रहे हैं अल्लाह ने जिम आपके लिए वसीला बनाया, आप अस्पताल जा रहे हैं अल्लाह ने अस्पताल वसीला बनाया आपके लिए, लेकिन अल्लाह हर जगह है। हम अल्लाह को पहचानते नहीं, दुरूद पढ़ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला। तो वो फिर जिंदा हो गए, इन्नल्लाहा लज़ुल फज़ल अलन्नासि वल्ला किन्ना अक्सर नासि ला यशकुरून, अल्लाह ताला लोगों पर नहायत शफकत वाला मेहरबान है लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मसला यही है कि हम अल्लाह ताला हर चो तरफ अपने वसीलों से हमको रहमत दे रहा है लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। रोज दूध पी रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, सारे वसीलों से ना, है ना, बच्चे पैदा और ऐसा वसीलों से, लेकिन उसका शुक्र नहीं हो रहा। दुरूद पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद وقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم, وہ خدا کے رستے میں جہاد کرو, جان لو خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جہاد پہ آیت نازل ہوئی اور جہاد فروع دین میں سے خاص حصہ ہے۔ جہاد مسلم امہ کی حفاظت کے لیے زیادہ تو جہاد ہوئے رسول اکرم کی زندگی میں, وہ دفاع کے لیے تھے, دفاعی جہاد تھے تاکہ امت قائم رہے۔ لیکن ایک جہاد وہ بھی ہوتا ہے کہ جو صرف پیغمبر یا ائمہ طاہرین جس کا حکم دے سکتے ہیں, وہ جہاد ہوتا ہے جبکہ کفر پھیل جائے اور کفر سے جنگ ہو, جو کہ انشاءاللہ جب امام اعظم آئیں گے جن کی کہ ہم آج جن کا کہ ہم جشن منا رہے ہیں, جشن ولادت, جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ جہاد کفاروں سے ہوگا, وہ ہوگا دین اسلام پھیلانے کے لیے, کیونکہ کفر اپنے آپ میں سب سے بڑی نجاست ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ کفر کے ذریعے آپ لوگوں کو ان کی ابدی زندگی سے روکو, اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا, اس کی صرف اس دنیا کی زندگی آپ نے لی ہے, لیکن آپ نے پروپوگنڈے سے اور میڈیا سے لوگوں کو حق سے دور رکھا اور ان کی آخرت کو بگاڑا, اس سے بڑا کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے۔ درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد علیہ منزل ذی یقرض اللہ قرض حسنا, کون ہے کہ جو خدا کو قرض حسنا دے, فیضاعف لہ اضافا کثیرا, تو اس کو اس کے لیے وہ کئی گناہ کر دے, واللہ یبقزو وہ یبسطو وہ الہی ترجعون, خدا ہی اس کو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور تم کو اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس کے اندر خدا نے قرض حسنا کی بات کری ہے, اس میں کہا کہ کون ہے خدا کو جو قرض حسنا دے, خدا اتنی بڑی بات کہی ہے, خدا کو قرض نہیں چاہیے, کائنات کی پوری ملکیت اس کے پاس ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو قرض حسنا کی بات کہی ہے لیکن پوری آسمان زمین خزانے اسی کے ہیں اور وہ غنی ہے حمید ہے, لیکن اس نے تم کو اس لیے کہا ہے کہ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے حساب سے سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قرض حسنا سوسائٹی کی جان ہے, آپ جب اللہ کہتا منظر ہے یقرض اللہ قرض حسنا, خود نہیں لیتا ہے, کہتا ہے مومنین کو دو جو کہ ضرورت مند مومنین ہیں۔ چھٹے امام نے اس کے پاس ایک صحابی آیا, کہا کہ مولا ہماری جو بستی میں لوگ شیعہ رہتے ہیں۔ کہا اچھا شیعہ رہتے ہیں؟ کہا اچھا, تو کیا کہ کوئی دولت مند کیا غریب کو کچھ پیسے دیتے ہیں کیا؟ کہ مولا وہ تو نہیں دیتے۔ تو کہتا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ خود جا کے جیب سے غریب دولت مند کی جیب سے مال لے لے اور امیر اس کو منع نہ کرے, وہ ہمارا شیعہ ہے, وہ ہمارا شیعہ ہے۔ منزل یقرض قرض ہو کیوں ہے ایسا؟ جب تک کہ بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا, مومن کا مومن تو حق ہے, کام نہ آئے گا صاحب زبان کی امت تیار نہیں ہوگی۔ جب تک کہ یہ جہاد کا جذبہ اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ نہ ہوگا, امت تیار نہیں ہوگی۔ لشکر امام اعظم, یہ ہم 15 شعبان کا جشن جو پڑھ رہے ہیں, لشکر امام اعظم جب ہی تیار ہوگا جبکہ ہم जिहाद के लिए तैयार हो, वो जिहाद जिहाद नफ्स। आज का जिहाद क्या है हमारा? आज का जिहाद टेररिज्म नहीं है। आज का जिहाद क्या है? जिहाद नफ्स है। आज का जिहाद क्या है? जिहाद इल्म है, इल्म है। लोगों को बुलाएं दीन की तरफ और अपना दिफा करें। आज जो मर्जों ने जो जिहाद का हुक्म दिया है, आज अगर सिस्तान ने जिहाद का हुक्म दिया, वो दिफा का जिहाद है। क्या क्या अगर टेररिस्ट आप पे हमला करें, आप जिहाद का आप दिफा करें अपना। ये जो जिहाद है, इस जिहाद को पूरी इंसानियत मानती है। इस जिहाद को मुसलमानों को हक, मुसलमानों को टेररिस्ट नहीं कह सकता। आज अगर मर्जों ने जो हुक्म दिया है, इसको पूरी दुनिया, यही एलिजाबेथ की हिकमत है। आज अगर सिस्तान ने जिहाद का हुक्म दिया तो इस बात को दुनिया इज्जत करती है उनके फतवे की, कि हर कम्युनिटी की ये हक है कि वो अपने आप का दिफा करे। ये भी अपनी तरह का जिहाद है कि आप जिहाद दिफा का जिहाद करें। ये भी जिहाद है इल्म लें। ये जिहाद है कि हम माल से एक दूसरे की मदद करें। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से भी हक मोहम्मद वाले तारी कि हमको इस काबिल बनाए कि हम इस उम्मत के कुछ काम आए, इस काबिल बनाए कि हम इमाम के लश्कर में शामिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु